अध्याय चार, 1889 का मेजी संविधान, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1889। 1889 का मेजी संविधान, जिसे इस दस्तावेज के लेखकों ने दाय निहोन तेइकोकु कैंपो अथवा जापान के महान साम्राज्य का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रेट एम्पायर ऑफ जापान की संज्ञा दी, सूझबूझ के साथ तैयार की गई एक ऐसी राजनैतिक एवं वैधानिक व्यवस्था थी, जिसके द्वारा तोकुगावा साम्राज्य के पतन एवं मेजी पुनः स्थापन 1868 से उत्पन्न शून्यता को समाप्त किया जा सके। इस नई राजनैतिक व्यवस्था को अपनाने में 20 वर्ष लगे। इसका एक मुख्य कारण उभरती हुई राजनैतिक अल्पतंत्र, पॉलिटिकल ओलिगार्ची में राज्य के स्वरूप के बारे में आपसी असहमति थी। इसके अलावा मेजी पुनः स्थापन के पश्चात उभरी अस्थिरता के कारण अधिकतर नेता समस्या से निपटने में व्यस्त थे। कुछ नेताओं का मत था कि एक उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया जाए, ताकि आम जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ कुछ नेता चाहते थे कि एक सशक्त केंद्रीय सरकार का गठन हो, जो आंतरिक अलगाववादी शक्तियों के साथ साथ बाहरी साम्राज्यवादी ताकतों का भी मुकाबला कर सके। अतः 1889 के मेजी संविधान में ऊपर लिखी दोनों विचारधाराओं की झलक मिलती है। पृष्ठभूमि, एंटीसीडेंट्स। हालांकि सामूहिक परामर्श के द्वारा जनसाधारण के हित में विवाद सुलझाने की धारणा से जापान का इतिहास पुनः अज्ञात नहीं था, तथा मुरो माची वाकुफू तथा तोकुगावा वाकुफू काल में ग्राम एवं प्रशासनिक परिषदें सक्रिय थी, परंतु सही अर्थों में प्रतिनिधि संस्थाओं का उद्भव 1827 में हुआ था, जब एक जापानी आओची रिन्शो ने अपनी पुस्तक योची सियारकू या विश्व का संक्षिप्त वर्णन, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का परिचय दिया। संसदीय व्यवस्था के विषय में जानकारी होने के बावजूद इस व्यवस्था को राजनीतिक संस्था के तौर पर न तो अपनाया गया और न ही इससे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। परंतु 1860 के दशक तक आते आते लोग तोकुगावा शासन की राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने लगे, तथा इसके विकल्प के रूप में नई अर्थपूर्ण व्यवस्था पर गंभीर रूप से विचार करने लगे। अतः इस दौरान इस विषय पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, तथा कई अन्य भाषाओं की पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया गया। इनमें रेम्पो, शियारकू, संयुक्त राज्यों का संक्षिप्त ब्यौरा है, जिनमें पहली बार कोककाई या कांग्रेस, गैनरोइन या परिषद, तथा सिंतोइन या सदन, तथा मांकोकु कोहो या अंतर्राष्ट्रीय विधि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने लगा, जिससे निम्न सदन तथा उच्च सदन इत्यादि शब्द राजनैतिक वाद विवादों में उभर कर आए। इनके अतिरिक्त दो अन्य पुस्तकों, सेयो जीजो या पश्चिमी हालात तथा ताएशेई कोकु होरोन, पाश्चात्य विधि का एक प्रदर्शन में विस्तार से विभिन्न सरकारों के स्वरूप की चर्चा की गई थी। इसके फलस्वरूप ही जापान में पाश्चात्य पद्धति का संवैधानिकवाद, अधिकारों का विभाजन तथा निर्वाचन संस्थाओं का उद्भव हुआ। सम्राट के शासन के पुनः स्थापन के बाद प्रशासकों ने पाश्चात्य संवैधानिक व्यवस्था के महत्व को समझा, जिसकी झलक हमें पुनः स्थापन के पश्चात के शपथ घोषणा पत्र में मिलती है। शपथ घोषणा पत्र के 5 अनुच्छेद निम्नलिखित थे, क, विचार सभाएं व्यापक रूप से स्थापित की जाएंगी तथा समस्त मामले लोकमत से तय किए जाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के लोग, जिसमें उच्च तथा निम्न समस्त वर्ग सम्मिलित हैं, राज्य के प्रशासनिक कार्य में एक होंगे एवं सहयोग करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, ताकि लोगों की उदासीनता देश को प्रभावित न कर सके। पुराने पैशाचिक रीति रिवाज बहिष्कृत कर दिए जाएंगे, तथा न्याय धरती एवं स्वर्ग के उचित नियमों पर आधारित होगा। शाही शासन के आधार स्तंभों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की समस्त विश्व में अन्वेषण किया जाएगा। शपथ घोषणा पत्र के प्रथम तीन अनुच्छेदों में राष्ट्रीय संसद का गठन, प्रजातांत्रिक शासन तथा स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत इत्यादि का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। चौथे अनुच्छेद में मुख्य रूप से उन संस्थाओं को समाप्त करने की बात कही गई जो नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस के विपरीत थी। पांचवें अनुच्छेद में पश्चिमी दर्शन तथा सामाजिक विचारों को अपनाने पर बल दिया गया था। इन अनुच्छेदों को कई प्रकार से देखा जा सकता है तथा शपथ घोषणा पत्र के प्रवर्तन एवं मेजी संविधान के बीच के 20 वर्षों में इस घोषणा पत्र के विभिन्न पहलुओं पर काफी वाद विवाद हुए। राजनीतिक वाद विवादों के इस काल में कबीला संबंधित गुटबंदी एवं अवसरवादियों का बोलबाला रहा। इस दौरान बाकूफी विरोधी मुख्य नेतागणों ने सम्राट के नेतृत्व में प्रशासनिक पुनर्गठन का कार्य आरंभ किया। इनमें चोशु जागीर के किदो ताकायोशी, शत्सुमा जागीर के ओकुबो तोशीमिची तथा इवाकुरा तोमे मी जो राजदरबार का नेतृत्व कर रहे थे का मत था कि सत्ता का केंद्रीयकरण किया जाए और शासन एक शक्तिशाली प्राधिकारी के पास रहे ताकि तोकुगावा काल की 260 स्वशासित जागीरों को एक राष्ट्रीय सूत्र में बांधा जा सके। इनकी नज़र में संवैधानिक आदर्श तथा अन्य बातें गौण थीं। इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए शाही आदेश इंपेरियल की संरचना की गई, क्योंकि केवल सम्राट ही लगभग 260 क्षेत्रीय शक्तियों की तुलना में संपूर्ण जापानी जनता पर अपने परंपरागत प्राप्त राजनीतिक प्रभाव तथा निर्विवादित दैवीय स्वरूप के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कर सकता था। इसके साथ ही यह भी अनुभव किया जा रहा था कि जब तक एक केंद्रीय सत्ता के तहत जनता को एक सूत्र में नहीं बांधा जाएगा, तब तक संवैधानिक सरकार का गठन संभव नहीं था। जून 1868 की संवैधानिक प्रक्रिया, जिसे सेताइशो या 1868 का संविधान की संज्ञा दी जाती है, इस दिशा में प्रथम कदम था। इसके अनुसार पूर्ण सत्ता एवं अधिकार एक प्रशासनिक गठन दाजोकान में निहित थे तथा सभी जागीरें इसके अधीनस्थ थी। दाजोकान परोक्ष रूप से अमेरिकी संविधान के सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के आधार पर तीन भागों में विभाजित की गई थी। प्रथम विधान परिषद, जिसका कार्य कानून बनाना था, हालांकि एक द्विसदनी विधानसभा का भी प्रावधान था, परंतु शुरू से ही इसे नज़रअंदाज किया गया तथा अंततः इसका परित्याग कर दिया गया। दूसरी प्रशासनिक परिषद थी, जिसके तहत शिंतो धर्म, वित्त, सेना तथा विदेश विभाग थे। प्रशासनिक परिषद का मुख्य कार्य नियमों का कार्यान्वयन करना था। तीसरा न्याय विभाग था, जिसका मुख्य कार्य न्यायिक प्रशासन था। दाजोकान व्यवस्था की संरचना पूर्णतः 702 ईस्वी की प्राचीन जापानी प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। यद्यपि पूरे जापान पर नियंत्रण और प्रशासन के उपकरण के रूप में दाजोकान प्रणाली सारे वित्तीय और सैनिक संसाधनों पर आधिपत्य का न तो एकमात्र और न ही पर्याप्त उपाय थी, लेकिन इस प्रकार का आधिपत्य असंतुष्ट दायमियों और समुराय वर्ग के द्वारा अराजकता और प्रतिक्रांति के प्रयत्नों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक था, क्योंकि दायमियों और समुराय वर्ग इस बात से भयभीत थे कि उनकी प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार पर एकात्मक सत्ता वाले नए शासन से आघात पहुंचेगा। उनकी यह भी मंशा थी कि तोकुगावा राजवंश के पतन से निर्मित शून्य को वे अपनी सैन्य शक्ति से भर सकेंगे। इन कारणों से वे अपने विशेषाधिकार को हर प्रकार से बनाए रखना चाहते थे। फिर भी दाजोकान प्रशासनिक ढांचा एक नए युग की शुरुआत था। यह इस बात का भी संकेतक था कि तोकुगावा शासन के अंतिम कुछ वर्षों में बाकूफू विरोधी आंदोलन में जो दृढ़ संकल्प दिखाई दिया था, वह भी दाजोकान व्यवस्था की विशेषता बन गया था। नए शासन द्वारा लागू किए गए कुछ सुधारों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप एक मजबूत और केंद्रीयभूत राज्य का ढांचा सुदृढ़ हुआ। निम्नलिखित सुधारों ने भी एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता को दोहराया। पहला, 1871 में जागीर व्यवस्था की समाप्ति और उसके स्थान पर सीधे सम्राट की सत्ता के अंतर्गत प्रशासनिक जिलों का निर्माण। दूसरा, समुराय वर्ग जो कुल जनसंख्या का 6% था, की विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा उसके साथ साथ सबके लिए अनिवार्य शिक्षा और सैनिक सेवा की शुरुआत, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान हो गया, तथा 1873 में भूमिकर सुधार की घोषणा। सत्ता और निर्णय के एकीकरण के बढ़ावा देने वाले इन प्रवृत्तियों को प्रायः पुनर्सामंतवादीकरण, रिफ्यूडलाइजेशन, या प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म जैसे विशेषणों से युक्त किया गया था। लेकिन आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में जापान उस समय जिन समस्याओं से जूझ रहा था, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह विवाद उठाना उस समय अविवेकपूर्ण बात मानी जाती थी कि जापान में संप्रभुता का केंद्र संसदीय सरकार को बनाया जाए या सर्वसत्तात्मक शाही सरकार की स्थापना की जाए। उस दौर में यही आवश्यक था कि ऐसी सहमति बनाई जाए जिसके माध्यम से राष्ट्र को सैनिक और आर्थिक मामलों में सुदृढ़ किया जाए, ताकि औपनिवेशीकरण और विखंडन की मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। अतः उस समय जापान की प्राथमिकताओं में संसदीय सरकार की स्थापना का मुद्दा एक गौण विषय ही हो सकता था। दाजुकान व्यवस्था, जिसमें कुछ मंत्रियों का समूह अंतिम निर्णय लेने की शक्ति से संपन्न था तथा कई विभागों पर नियंत्रण रखता था, 1885 तक चलती रही। 1885 में ही मंत्रिपरिषद वाली कार्यपालिका व्यवस्था की शुरुआत की गई। सरकार के महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा कई यूरोपीय देशों की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया और जापान में शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में कई प्रयास किए गए। इन प्रस्तावों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, जनता के अधिकारों के अनुरूप संवैधानिक रूप से सीमित राजतंत्र, और दूसरा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अनुरूप निर्वाचित प्रतिनिधि सभा। यदि विस्तार पूर्वक कहा जाए तो प्रथम प्रस्ताव के अनुसार, जिसके समर्थक कीदो कुइन तथा ओकुबो तोशिमीची थे, संपूर्ण सत्ता का आधार सम्राट होगा और वह प्रशासन का अधीक्षण करेगा, विदेश नीति का संचालन करेगा तथा सेना का नायक होगा। सम्राट के अधिकारियों को नियुक्त और निलंबित करने का तथा युद्ध की घोषणा, युद्ध विराम एवं संधि करने का भी अधिकार होगा। संसद द्वारा पारित सारे विधेयकों पर भी सम्राट को विशेषाधिकार प्राप्त होगा तथा वह आपातकालीन अध्यादेश जारी कर सकेगा, जिन्हें कानून का दर्जा प्राप्त होगा। साथ ही, हालांकि सम्राट में सारी शक्तियां निहित होंगी, तथापि वास्तविक प्रशासन का कार्य और उसकी जिम्मेदारी विभिन्न विभागों के मंत्रियों के पास होगी। इन मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाएगी, न कि वे प्रतिनिधि सभा के द्वारा निर्वाचित होंगे। जहां तक संसद का प्रश्न है, इसके दो सदन प्रस्तावित किए गए हैं, गेनेरोइन, जिसकी तुलना अमेरिकी सीनेट से की जा सकती है, तथा जिसके सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होंगे, और गीइन, संसद का निम्न सदन, जिसके सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे, परंतु इस संसद की भूमिका अस्पष्ट बहुत सीमित होगी, क्योंकि सम्राट के हाथ में असीमित सत्ता रहने दी गई। जैसे कि संसद के निर्णयों को विशेषाधिकारों के द्वारा निरस्त कर देना तथा आपातकालीन अध्यादेश जारी करना। संवैधानिक सुधार का दूसरा दृष्टिकोण उपयुक्त सत्तावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध था। इसके प्रमुख समर्थक इतागाकी ताएशुके, गोजो शोजीरो तथा एतो शिंपेई थे। इन लोगों ने कोरिया पर चढ़ाई के मुद्दे पर 1873 में अपने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिए और उन सत्ताधारियों के प्रबल आलोचक बन गए जो लोकप्रिय संसदीय संस्थाओं की स्थापना के प्रति उदासीन थे। इन लोगों ने आयोकोकु कोतो अर्थात राष्ट्रभक्त सभा नाम का एक संघ भी स्थापित किया, जिसके माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में संवैधानिक सुधारों पर एक व्यापक वाद विवाद शुरू किया। कुछ संवैधानिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें जापान के आरंभिक मेजी काल के लिए उपयुक्त बताया गया। ऊपर वर्णित दोनों विचारधाराओं के पक्षधर, एक जो सार्वजनिक शिक्षा और आर्थिक विकास के उपरांत क्रमशः संवैधानिक सुधार चाहते थे, और दूसरे जो तत्काल संसदीय व्यवस्था की स्थापना के समर्थक थे, अपने अपने दृष्टिकोणों की स्वीकृति हेतु व्यापक जनसमर्थन जुटाने के लिए लगभग 10 वर्षों तक प्रचार करते रहे। इससे एक लाभ यह हुआ कि राजनीतिक रूप से जागरूक एक व्यापक जनसमूह तैयार हो गया, जिसमें मानवीय अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों, संप्रभुता, प्रतिनिधि संस्थाओं, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय आदि के मुद्दों के बारे में चेतना आ गई। राजनीतिक विचारों में इस उबाल का परिणाम यह हुआ कि जापान के विभिन्न भागों में कई लोकप्रिय किंतु असंबद्ध अराजक घटनाएं हुई, जिनके द्वारा अरसे से चली आ रही दमित शिकायतों का विस्फोट हुआ। साथ ही निर्वाचन पर आधारित संसद तथा लोकप्रिय स्थानीय सुशासन की संस्थाओं की स्थापना की मांगें भी रखी गई। चूंकि जापान में लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की परंपराओं का अभाव था, राजनीतिक विरोध और विद्रोह के बीच की सीमा रेखा प्रायः धुंधली पड़ गई थी, और 1870 में कई विद्रोह हत्याएं तथा अन्य अराजक घटनाएं घटी। इतागाकी ने इस आंदोलन को, जिसे जनाधिकार आंदोलन का नाम दिया गया, नियंत्रण में रखने की कोशिश की, परंतु इसमें वह अपनी पार्टी आए कोकुतो का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा करने से अधिक कुछ नहीं कर सका। सरकार ने बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए प्रेस, प्रशासन और मानहानि के नए कानून बनाए। साथ ही जनसभाओं के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक कर दी गई, और सैनिकों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों तथा छात्रों के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना निषिद्ध कर दिया गया। तेजी से बदलती इन स्थितियों में उन अनुदार प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला, जिनके अनुसार जापानी लोग अपने सामंती इतिहास से तुरंत निकलने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्याय और संप्रभुता का महत्व भली भांति आंकने में असमर्थ थे। इन परिस्थितियों में सरकारी पक्ष ने एक कठोर कदम उठाया और ओकुमा शिगेनोबू को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव के अपराध में सरकार से बर्खास्त कर दिया। 1881 में सम्राट की एक घोषणा द्वारा यह वायदा किया गया कि 1890 में एक राष्ट्रीय विधायिका की बैठक बुलाई जाएगी। इसके उपरांत इतो हिरो बुमी तथा उनके सहकर्मियों ने विधिवत राष्ट्रीय विधायिका के सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी। वह संविधान का एक आलेख भी तैयार किया। इतो का यह दृढ़ संकल्प था कि हालांकि जापानी संविधान किसी भी पश्चिमी संविधान की दास्तापूर्ण नकल न हो, वह एक साथी जापान की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप हो और पाश्चात्य संवैधानिक सिद्धांत तथा व्यवहार का निचोड़ हो। इस उद्देश्य से 1882 में वह एक जापानी अध्ययन मंडल को अपने नेतृत्व में यूरोप ले गए, और वहां से लौटने पर अपनी अध्यक्षता में 1883 में एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार के अनुदार नेतृत्व में एक विशिष्ट जापानी संविधान की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ती गई, और किसी उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना की संभावना न्यून होती गई। हालांकि मेजिस पुनः स्थापना के बाद व्यापक शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों के कारण इतिहास में पूर्ण वापसी संभव नहीं थी, तथापि पाश्चात्य संसर्ग से जन्मे स्वतंत्रता और समानता की अनियंत्रित भावना को जापानी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरनाक माना गया। यद्यपि जापानी परंपरा को सम्राट की संप्रभुता की छत्रछाया में सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, और जापानी राष्ट्रीय कोकुताए की निर्मलता को सम्राट की पैतृक सत्ता के अधीन संरक्षित किया गया, फिर भी पाश्चात्य ढांचा बहुत विकल्पों के साथ पूर्णतः नकारा नहीं जा सका। अनुदारवाद, प्रतिक्रियावाद, सामाजिक विकासवाद, उग्र राष्ट्रवाद, हेगल का राजकीय सत्तावाद तथा अन्य कई सिद्धांतों के द्वारा व्यक्ति पर राज्य की सत्ता को उचित ठहराया गया। साथ ही उदारवाद और फेबियन समाजवाद की कई धाराओं के द्वारा राज्य के विरोध में व्यक्ति के अधिकारों के समर्थन का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया। जापानी नेतृत्व ने स्पष्टतः सर्वसत्तात्मक राज्य के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। मेजी नेतृत्व ने प्रसिद्ध जर्मन विधिवेत्ता हरमन रोसलर को वैधानिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया। हालांकि अन्य कई जर्मन विद्वान और राजनेता मध्य मेजी जापान में कार्यरत थे। 1880 के दशक के जापानी संविधान का प्रारूप तैयार करने में एक प्रमुख सहयोगी होने का श्रेय रोसलर को ही जाता है। इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण जर्मन विद्वान रुडोल्फ फन जेनाइसेट और लॉरेंज फन स्टाइन का भी जापानी संवैधानिक चिंतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रोस्लर ने एक प्रकार के सामाजिक राजतंत्र का समर्थन किया जो वर्ग विभेदों से ऊपर उठकर काम करेगा और समाज की हर व्यक्ति के लिए समान स्वतंत्रता व समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि इस काम में वयस्क मताधिकार और राजनीतिक दलों की व्यवस्था अक्सर दलबंदी का शिकार हो जाती है। संसद की स्वतंत्रता में संघर्षरत विभिन्न दलों के बीच विवाद में सार्वजनिक हित खतरे में पड़ जाता है, ऐसा रोसलर का विश्वास था। मेजी संविधान के अंततः जापानी प्रणेता इनोउए कोबाशी तथा इतो हिरोबुमी थे। स्टाइन, जेनाइसेट और रोसलर के विचारों से इन जापानी संविधानविदों के काफी विचार मिलते जुलते थे। सबने सम्राट में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आदि सारी शक्तियों का समावेश किया और यह मत प्रस्तुत किया कि एकमात्र सम्राट ही न्यायपूर्ण शासन का स्रोत हो सकता है। इतो व इनोउए दोनों ने ही सम्राट को वंशानुगत सत्ता की निरंतरता में पूरे राष्ट्र के नागरिकों की भक्ति का किरण केंद्र माना। उन्होंने इस बात की पुष्टि में यह तथ्य प्रस्तुत किया कि 1868 के मेजी पुनर्स्थापन में सम्राट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऊपर वर्णित वाद विवाद के बाद फरवरी 1889 में नए संविधान का प्रारूप उभर कर सामने आया। इस घटना के पूर्व ही हिरोबूमी ने दो महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार प्राप्त कर लिए थे। 1885 की मंत्रिपरिषद व्यवस्था, जिसने पुरानी दाजोकान प्रणाली को विस्थापित कर दिया था, वह 1884 की अभिजात व्यवस्था पीरेज सिस्टम, जिसके अंतर्गत पांच पदों राजकुमार, माइकूज, मार्कुइज, काउंट, वायकाउंट और वैरन से सम्मिलित रूप में राष्ट्रीय विधायिका गठित की गई। मेजी संविधान में जबकि मंत्रिपरिषद व्यवस्था को जारी रखा गया, अभिजात व्यवस्था को, जिसमें उस समय के महत्वपूर्ण समुदाय नेता शामिल थे, संसद के उच्च सदन में परिणत कर दिया गया और यह भूमिका दी गई कि वह निम्न सदन पर नियंत्रण रखे। इसके अलावा 1887 में जर्मन पद्धति पर आधारित लोक सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई।